हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कार के बैक सीट पर बैठे हुए वेदांश की आंखों में सवाल और थोड़ी उलझन थी। वहीं अंबिका खुश दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए वेदांश की तरफ देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अपने सिर को उसके कंधे पर टिकाकर उसने धीरे से कहा, थैंक यू सो मच। वेदांश ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, किस लिए? अंबिका ने एक पल को उसकी आंखों में झांका और बोली, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मुझे मेरे घर लेकर जाओगे। भले ही तुमने मुझे अकेले नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी इतने दिनों बाद मैं अपने परिवार से मिल पाई और तुमने अपनी बहन और मेरे भाई के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लिया। वेदांश ने उसकी बात को सुनते हुए गंभीरता से उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान में पूछा, मैंने तो सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुमने? अंबिका का चेहरा थोड़ा झिझक में बदल गया। वो वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? वेदांश ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, तुमने ना तो मुझे एक्सेप्ट किया है और ना ही हमारे रिश्ते को, है ना? अंबिका एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वेदांश ने उसकी तरफ सीधा देखा और बोला, फिर जब तुम्हारा भाई कह रहा था कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ रह रही हो, अपनी मर्जी से तुम कभी मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रहोगी, तब तुम चुप क्यों थी? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सच बोल रहा था। वेदांश की बातों में जो तंज था वो अंबिका के दिल को कहीं गहरे तक चोट कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने एक कोशिश की सफाई देने की। देखो वेदांश, वो सिर्फ... वेदांश ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या ये? वो उस वक्त तुमने कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम्हारा भाई सही कह रहा था और तुम भी उसका ही साथ दोगी। आखिर मैं लगता ही कौन हूँ तुम्हारा? बस एक बेरहम इंसान हूँ, एक डेविल, एक क्रिमिनल जिसने तुम्हारा किडनैप किया और जबरदस्ती तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना हमारे बीच, और ना कभी हो सकता है तुम्हारी तरफ से। वेदांश वहाँ पर अक्षय के लगाए गए एग्जाम की वजह से इतना दुखी नहीं था जितना दुख उसे अंबिका के कुछ ना बोलने की वजह से हुआ था। अभी भी वो बहुत ही ज्यादा हर्ट था, इसलिए ये सब कुछ बोल रहा था। और अब उसकी ऐसी बातें सुनकर अंबिका को भी बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अंबिका ने धीरे से वेदांश के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन वेदांश ने तुरंत ही उसका हाथ दूर झटक दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। अंबिका ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हमारे बीच इन सब के बारे में बात हो चुकी है और तुमने तो उस दिन कितना कुछ कहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो फिर आज तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या उन बातों का कोई मतलब नहीं था? वेदांश ने एकदम बेरुखी से कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैंने कहा था, जो कुछ भी कहा था उस दिन भी तुम्हारी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला था, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो मेरे साथ रहना, और अगर ऐसा होता तो तुम अपने भाई के सामने कुछ तो बोलता। बस ऐसे ही मेरे साथ वापस आ गई हो, शायद डर की वजह से, या तुम्हारी मजबूरी रही होगी, क्योंकि आज तो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अंबिका को बहुत तकलीफ हो रही थी वेदांश के मुंह से बार बार ऐसी बातें सुनकर। ऐसा कुछ भी सुनना क्या सोचा भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि वो खुद भी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज थी। अंबिका चुप हो गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वेदांश ने एकदम अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया। वेदांश ने गहरी सांस ली और अंबिका की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, तुम्हारे भाई को क्या लगता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो। अंबिका, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अंबिका ने उसकी आंखों में कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन वेदांश के चेहरे पर हल्की नाराजगी और दर्द का मिक्सअप एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं वेदांश, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं बस। वेदांश ने उसकी बात को फिर से काटते हुए कहा, बस क्या? सच बताओ, क्या तुम भी यही मानती हो कि मैं तुमसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं हूँ? अंबिका के चेहरे पर कन्फ्यूजन और झिझक साफ छलक रही थी। उसने एक पल को चुप रहते हुए उसकी बातों को सोचा, फिर धीरे से बोली, वेदांश मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या अंबिका, वेदांश ने उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए कहा। कार के रोकते ही अंबिका घबराहट में वेदांश की तरफ देखते हुए सफाई देने के लिए बोल पड़ी। देखो वेदांश प्लीज, ऐसी बात नहीं है, हम घर चलकर बात करते हैं, अभी तुम ठीक नहीं लग रहे। लेकिन वेदांश ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। वो इस वक्त एकदम सीरियस और काफी ज्यादा गुस्से में था। अचानक वो अंबिका की तरफ थोड़ा झुकते हुए धीरे धीरे और नजदीक आने लगा। अंबिका ने थोड़ा घबरा कर अपने शरीर को पीछे की ओर खिसकाया, लेकिन उसकी जगह कम थी। उसे महसूस हुआ जैसे वेदांश उसे सच में किस करने वाला था। अंबिका के मन में ये ख्याल आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हड़बड़ाहट में उसने अपना हाथ वेदांश की छाती पर रख दिया, उसे रोकने की कोशिश में। लेकिन वेदांश ने उसकी एक न सुनी, वो उसके और भी करीब आ गया और उसने अपना हाथ उसके पीछे ले जाकर उसने अंबिका की साइड का कार का दरवाज़ा खोल दिया। वेदांश की निगाहें उसकी आँखों में गहराई से देखते हुए बोली, अगर सच में ऐसा है तो तुम अभी के अभी अपने घर वापस जा सकती हो, हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं अंबिका। उसके लहजे में नाराज़गी और दर्द दोनों की झलक थी। वेदांश ने आगे कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ इतनी तकलीफ होती है तो मैं तुम्हें और तकलीफ देने का कोई हक नहीं रखता। तुम अपनी दुनिया में अपने परिवार के पास जा सकती हो और उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती रहने को कहूँगा। अंबिका उसकी इस बात पर एकदम चौंक गई। उसने वेदांश की तरफ अविश्वास भरी नज़रों से देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि उसने ये बात सच में कही है या नहीं। वेदांश की ये बातें सुनकर उसकी आँखों में आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वेदांश ने फिर अपनी जगह पर वापस बैठते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा। उसका चेहरा इमोशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने फिर धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैंने अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ गलतियां की हैं और शायद ये भी एक गलती है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में इतनी तकलीफ होती है तो मैं और तुम्हें इस रिश्ते में और बांध कर नहीं रख सकता। शायद मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए आज से तुम आज़ाद हो अंबिका, तुम जा सकती हो। वेदांश की ये बात सुनकर अंबिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नज़र भरकर वेदांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वह कुछ पलों तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे माफ कर दूंगी और सब भूल जाऊंगी। वेदांश ने उसकी तरफ देखे बिना ठंडे लहजे में कहा, मैंने माफ़ी मांग भी नहीं रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ भूलने को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ इस कैद से, इस बंधन से जिसमें तुम इतने दिनों से बंधी हुई हो। अंबिका ने उसकी ये बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंसू पोंछे। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर वेदांश ठाकुर, तुमने मुझे अब तक जो ही दिया उन सब चीज़ों के लिए। उसकी आवाज़ में दर्द और कड़वाहट थी और ये कहकर वो धीरे धीरे कार से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन आंसुओं को वेदांश से छुपा लिया। अंबिका के बाहर निकलते ही वेदांश ने एक पल के लिए उसे जाते हुए देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी नज़रें मोड़ लीं और खुद को रोक लिया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने गहरी उदासी में खिड़की के कांच पर जोर से अपना हाथ मारा। उसका हाथ कांच पर कसकर लगा और उससे खून निकलने लगा। दर्द से उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने की कोशिश नहीं की। कुछ देर तक वेदांश अपने साथ वाली खाली सीट को देखता रहा, जो अब अंबिका के बिना खाली लगने लगी थी। वेदांश के चेहरे पर पछतावे की परछाई थी, लेकिन उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, सही कह रहा था उसका भाई, जबरदस्ती का कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी स्टार्ट करो, घर चलो। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। वेदांश बिना कुछ कहे कार की खिड़की से बाहर देखने लगा और गाड़ी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन अंबिका के ऐसे चले जाने की वजह से उसके दिल में एक गहरी खालीपन का एहसास था, जैसे वो कुछ बहुत कीमती खो चुका हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है, लेकिन अब वो शायद पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। टू बी कंटिन्यूड।